रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। तुम रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।
एक स्नेह के धागे से हो, एक स्नेह के धागे से विश्व एकता लानी है।
एकता लानी है।
गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है। गुण रूपी मोती ले सबके माला एक बनानी है।
क्लास की शुरुआत एक छोटे से प्रयोग के साथ करें। चेतना की वह चमकती हुई किरण मैं एक ज्योतिर्मयी आत्मा हूं, जो कुटीर तट पर विराजमान एक चमकता हुआ हीरा संपूर्ण चेतना को सभी भ्रुकुटि में केंद्रित करेंगे। संपूर्ण शांत, संपूर्ण मौन, मैं आत्मा एक तेजस्वी, एक संपूर्ण पवित्र, एक संपूर्ण कुण स्वरूप बिंदु अपने फरिश्ते स्वरूप में चल रहा हूं पर सूक्ष्म वतन की ओर और पहुंच जाता हूं। बाप दादा के सम्मुख स्वयं अव्यक्त बाप दादा सम्मुख खड़े हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं। गुणवान भव, गुणमूर्त भव, गुणग्राही भव, प्रभु पसंद भव। बाबा से प्राप्त यह सभी वरदान लेकर मैं फरिश्ता पुनः नीचे उतरता हूं और इस देह में प्रवेश करता हूं। भ्रुकुटी तख्त पर बैठी मैं आत्मा अब अपनी नजर चारों ओर घुमा रही हूं। सभी धीरे धीरे जहां तक हो सके एक दूसरे को देखना है और जिस जिस आत्मा को भी देखे इस संकल्प से मैं आत्मा गुणमूर्त हूं उसी तरह जिस आत्मा को मैं देख रही हूं वह भी गुणमूर्त है। अपनी नजर धीरे धीरे जो भी दिखाई दे रहे हैं उन सभी की ओर ले जानी। एक एक आत्मा गुण स्वरूप है, एक एक आत्मा प्रभु पसंद है। सबकी भ्रुकुटि में आत्मा को देखते हुए यह संकल्प करे यह श्रेष्ठ आत्मा है, श्रेष्ठ बाप की श्रेष्ठ संतान है, श्रेष्ठ प्रारब्ध वाली आत्मा है। और इस संकल्प से पुनः अपने देह के भान में आकर ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले किसी एक देश के राजा ने अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को भोज के लिए बुलाया। उसके महल में ब्राह्मणों की भीड़ हो गई और सभी ब्राह्मण बहुत खुशी से और आनंद से भोजन कर रहे थे। उसी समय अचानक एक गरुड़ पक्षी, एक गरुड़ आकाश से उड़ रहा था और उसने अपने मुंह में एक मरा हुआ सांप पकड़े हुए था और उड़ रहा था। और उसी समय जब ब्राह्मण भोजन कर रहे थे तो उड़ते हुए उस गरुड़ के मुंह में जो सांप था, उस सांप के विष की कुछ बूंदे नीचे गिरी और एक ब्राह्मण के थाली में गिरी। उस ब्राह्मण ने उस भोजन को स्वीकार किया। ये दृश्य किसी ने भी नहीं देखा, ना तो राजा ने देखा ना और किसी ने न देखा, और ना ही उस ब्राह्मण को ही ये पता था, और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यमराज ने अपने दूत भेजे, पापी कौन, अपराध किसका, दोष किसका, यह ढूंढने के लिए। यमराज के दूत ऊपर घूम रहे थे, दोष किसका, क्या उस राजा का, परंतु राजा को तो यह पता ही नहीं कि विष कहां से गिरा, क्या उस गरुड़ का, उस गरुड़ का भी क्या दोष, क्योंकि उस गरुड़ का तो भोजन ही सांप है, क्या वह सांप अपराधी है, परंतु सांप तो मृत था, तो अभी आप बताइए अपराधी कौन कौन, उसके कर्म और ऐसी मृत्यु लिखी थी। और वो दूत कुछ समय ऐसे ही घूमते रहे कुछ दिन, और एक दिन अचानक कुछ और दूसरे गांव से, दूसरे शहर से ब्राह्मण उस गांव में आए और वो पूछने लगे। एक स्त्री वहां बैठी थी गांव में, उस स्त्री से उन्होंने पूछा कि यहां के राजा का निवास महल कहां है। उस स्त्री ने कहा, उस राजा का निवास स्थान महल उधर है, उधर जाओ, परंतु एक बात ध्यान रखना, हमने सुना है ये राजा ब्राह्मणों को मारता है। क्या कहा उसने, मैंने सुना है ये राजा जो है वो ब्राह्मणों को मारता है, यमदूतों ने कहा ये है, इसको ले जाना है। क्यों ये कथा भागवत में कही है, क्यों, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कुछ कहा, अवगुण देखा और वर्णन भी किया, पर चिंतन पतन की जड़ है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जिस चीज का हमें कुछ पता नहीं, जो चीज हम पूरी तरह जानते नहीं, जानने की परिभाषा बहुत ऊंची है, उस विषय में कुछ कह देना, किसी के प्रति किसी का चरित्र हनन करना, निंदा करना, यह किस श्रेणी में आता है, परचिंतन परदर्शन। तो आज के की मुरली में बाबा क्या कर रहे हैं, आज बाप दादा क्या कर रहे हैं, माला बना रहे या फेर रहे? बना रहे हैं। किसकी माला बना रहे हैं? श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ माला, श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ प्रारब्ध। और किन बच्चों को देख रहे हैं जो पुरुषार्थ में भी कैसे हैं, एकदम लास्ट है और प्यादे हैं, पर उनमें भी बाबा को क्या नजर आ रहा है? गुण नजर आ रहा है। परमात्म संतान और कोई गुण नहीं, यह हो नहीं सकता। इस वाक्य को, इस महावाक्य को अपने मानस पटल पर अंकित कर देना है। कौन सा महावाक्य है? परमात्म संतान और कोई गुण नहीं, यह हो नहीं सकता। भगवान ने जिसको चुना, क्या वो अवगुणी हो सकता है? क्या गुण रहित, गुण विहीन हो सकता है? क्या उसके चुनाव में दोष है? पर हम तो कह रहे हैं, पर हमें तो दिखता है। भक्ति में हमने बहुत गाया है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और बाबा के बनने के बाद इन निर्गुण हारों में। ऐसा तो गीत नहीं बदल गया। तो आज की मुरली में गुणों की चर्चा है। हर एक गुणवान है, और इन गुणों का क्या महत्व है? तीन महत्वपूर्ण बातें यहां बताई है बाबा ने। इन गुणों का क्या महत्व है, कौन बताएगा? गुणों के आधार पर तीन बातें हुई है। गुणों के आधार पर ही तुम ब्राह्मण बने हो, अर्थात जिंदा हो, एक। दूसरा, गुणों के आधार पर ही बाप के बने हो, और गुणों के आधार पर ही प्रभु पसंद हो, और प्रभु पसंद यदि हो तो वही कर्म करो जो प्रभु को पसंद है, और उसे निस्वार्थ निश्चल ऐसा हृदय, ऐसे कर्म पसंद है। आज की मुरली में बाबा ने दो महत्वपूर्ण वरदान दिए हैं सूक्ष्म में। एक तो बहुत ज्यादा होशियारी दिखाते हैं, तो क्या बन जाओ? कम होशियार भव। और दूसरा, बुद्धि बुद्धु भव। तो ये दो वरदान नए वरदान है थोड़े। पहला कम होशियार भव और दूसरा बुद्धु भव। पसंद आए दो वरदान सभी को? ये अच्छे वरदान है दो नए। तो बाबा ने कहा है उल्टी होशियारी दिखाते हैं, होशियारी के खेल दिखाते हैं, और गिरती कला की कलाबाजी दिखाते हैं। क्या क्या करते हैं बच्चे? गिरती कला की कलाबाजी, उल्टी होशियारी और होशियारी के खेल। तो आज की मुरली में ऐसे 10 खेलों की चर्चा बाबा ने की है। सभी ने मुरली सुनी भी है और पढ़ी भी है। 10 तो कहीं दिखे नहीं, कहां से आ गई ये 10? है। और जो सभी इस भट्टी में आए हैं, वो सारे ही सारे 10 के 10 खेल यहां से जाने से पहले यही छोड़कर जाना है। अगर शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो कहां जाओ? और हम कहां बैठे हैं अभी? शांति स्तंभ में आ जाओ तो उसी शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होकर ये संकल्प करना है कि जो 10 खेलों की चर्चा आज बाबा ने की है, जो उल्टी, जो गिरती कला की कलाबाजी है, और जो उल्टी होशियारी है, और जो होशियारी के खेल है, वो यही छोड़ के जाना है। जाएंगे सभी? तो सबसे पहला खेल कौन सा है, कौन बताएगा? 10 खेलों के 10 नाम भी हम देंगे। सबसे पहला खेल जिनको समाना है उसको फैलाते हैं। तो पहला खेल है फैलाने का खेल। जिसको समाना है उसको फैला रहे हैं, तो फैलाने का खेल। उसमें 4 बातें हैं। एक तो देखना, दूसरा जानना, तीसरा धारण करना और चौथा परचिंतन करना, वर्णन करना। किस बातों का? दूसरों की कमी का, कमजोरी का, खोट का, ऐब का, दोष का, खामी का, इम्परफेक्शन का, फ्लॉ का, डिफेक्ट्स का, वीकनेस का, कमजोरी का। क्या करते हैं? सबसे पहली स्टेज क्या बताई? एक के बाद एक स्वतः ही आने लगता है। पहला देखना और फिर उसे जानना और फिर उसका उसको धारण करना और चौथा उसका वर्णन करना। उसका वर्णन करना, ये राजा जो है इसके बारे में सुना है कि ये ब्राह्मणों को मारता है। वर्णन ऐसे ही नहीं आया, पहले देखा, फिर जाना, फिर धारण किया और फिर वर्णन किया। पहला है देखना। क्या देखेंगे? गुणमूर्त होकर देखो, सहज और श्रेष्ठ गुण ही नजर आएंगे और वो श्रेष्ठ आत्मा का भाव जागृत होगा। यदि गुण देखेंगे तो देखना क्या है? क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा ही वह चिंतन चलने लगता है। पहले ही ये समझ लो, पहले ही ये संकल्प ले लो कि ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये महान आत्मा है, परमात्मा संतान है, भगवान ने इसे चुना है और उसमें कोई अवगुण ना हो, ये हो नहीं सकता। बार 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 चित्त में, मन में, बुद्धि में इस वाक्य को भर लेना है ताकि ये कभी ना भूले। इस गुण के कारण ही हम जिंदा है, इस गुण के कारण ही वो भी जिंदा है, इस गुण के कारण ही वह परमात्मा संतान बना है, भगवान ने उसे चुना है। हमने भगवान को चुना या उसने हमको चुना? किसने किसको चुना? क्या हमारे पास कोई योग्यता थी जो उसे चुने? क्या पता भी था कि भगवान इसे कहते हैं? उसने आकर चुना है हमें। तो देखना, पहला है देखना, दूसरा है जानना, टू नो। पर नॉलेज की परिभाषा क्या दी बाबा ने? ब्राह्मण परिवार में बाबा कहते हैं कि जानना तो जरूरी है, जो जानते नहीं देखते नहीं उनको क्या कहा जाता है? बुद्धू। परंतु ये बुद्धू बनना अच्छा है क्योंकि कम से कम वो परचिंतन की लिस्ट में तो नहीं आ रहे, गॉसिप करने वालों की लिस्ट में तो नहीं आ रहे। तो देखना भी है तो क्या बनकर देखो? फिर मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर देखो। देखना अर्थात नॉलेज अर्थात क्या करना? भस्म करना, स्वयं की भी कमजोरी को, उसकी भी कमजोरी को बदलना, बदलाना और बदला न लेना। यह परिभाषा है नॉलेज की। तो नॉलेज अर्थात स्वयं की कमजोरी को भस्म करना और उसकी कमजोरी को भस्म करना, परिवर्तन करना, बदलना। एक और किस समान में स्थित होकर? मास्टर ज्ञान सूर्य। यह नॉलेज की परिभाषा है। तीसरा धारण करना। अगर देखते रहे तो धीरे धीरे धारण करना स्वतः ही होने लगेगा। उस कमजोरी को हम अपने अंदर धारण कर लेंगे, वो उसकी कमजोरी नहीं रही, वो हमारी कमजोरी रही और हम उसका बार 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 धीरे धीरे वर्णन करने लगेंगे। तो धारण करना, कमजोरी को धारण करने से क्या हो जाता है? पक्का संस्कार, नेचुरल संस्कार बन जाता है और फिर उस संस्कार को बदलने में मेहनत करनी पड़ती है। चौथा है पर चिंतन, वर्णन करना उसका, फिर फैलाना उस बात को। अगर वो बात झूठी हो तो कितना बड़ा दोष है, कितना बड़ा पाप के हम भागी बन रहे हैं। यहां का एक का 100 गुना दंड है। बाबा ने आगे कहा है कहीं, किसी के मन मनाभव के रास्ते में विघ्न नहीं बन जाना है। मन में भी ना रखना और ना ही मन मनाभव में किसी के विघ्न बन जाना। अगर हमारी वजह से किसी की ग्लानि हो रही है हमारे परचिंतन के वजह से वो चीज फैल रही है, तो हम यज्ञ का वातावरण शक्तिशाली बना रहे या कमजोर? हम यज्ञ रक्षक हैं। एक एक ईंट है यज्ञ की। अपने निहित स्वार्थ के लिए यज्ञ को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। यज्ञ हम पर खड़ा है। हर एक ये समझे कि मैं यज्ञ हूं, मैं यज्ञ हूं। इस तरह से बाहर की किसी चीज को धारण कर लेना, समा लेना और वर्णन करना, बाबा ने कहा यह वैष्णवों का कर्तव्य नहीं। वैष्णव अर्थात शुद्ध, पवित्र, प्रांजल। वैष्णव भक्त देखे संसार के बाहर के कृष्ण भक्त और राम भक्त, कितनी शुद्धि और कितनी पवित्र होते हैं। जो अभी भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं संसार में, बाहर का नहीं खाएंगे, कृष्ण प्रसाद समझकर खाते हैं। सनातन गोस्वामी जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वैष्णवों की क्या मर्यादाएं हैं, कैसे उन्हें खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कैसे आरती करना चाहिए, बात कैसे करना है, बोलना कैसा है, सब कुछ लिखने को कहा था। एक महान ग्रंथ है हरि भक्ति विलासा, उसमें इटिकेट्स, मैनर्स वैष्णवों के, उसकी चर्चा है। उसमें वैष्णव अपराधों की गिनती है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि दूसरों के अवगुण देखना और उसका फिर वर्णन करना, चाहे वो अगर राइट है, अगर वो राइट भी है परंतु आपने क्रिटिसाइज किया तो उस कर्म का आधा भाग तुम्हारे सर पर, अगर वो गलत है तो 100% वो तुम्हारा कर्म भोग बनेगा। जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई अफवाह सुन ली और सबको बता दिया, सारे गांव में वो फैल गई और बाद में पता चला वो जो बात थी वो तो गलत थी। ये व्यक्ति अब पश्चाताप करने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, सब जगह मैंने ये क्या फैला दिया, अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं। वो अपने गुरु के पास गया, गुरु से कहने लगा कि मैंने उस व्यक्ति के चरित्र के विषय में ऐसी ऐसी सारी बातें सारे गांव में फैला दी है और अब पता चला है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो गुरु ने कहा, एक थैली भरकर उसे पंख दिए छोटे छोटे और कहा सारे गांव में ये जो पंख के टुकड़े हैं वो फैला दो। उसने फैला दिए और कहा, जब वो दूसरे दिन आया तो गुरु ने कहा अब जाकर वो जो पंख है छोटे छोटे उसके टुकड़े वापस एकत्र करके ले आओ। वो गया, अब कहां ढूंढेगा, कैसे एकत्र करेगा। गुरु ने कहा तुमने जो किया वो भी ऐसा ही है, जो बात तुम्हारे मुख से निकल गई और तुमने जो फैला दी अब उसका कुछ नहीं, विकर्म हो चुका है। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था विकर्मों का बंधन, विकर्मों का बोझ, झाड़ बताया था ना, छह टालियों वाला झाड़, उसमें एक विकर्म था, पास्ट के विकर्म। यदि ब्राह्मण बनने के बाद भी यदि विकर्म होते ही रहते हैं तो दग्ध कब करेंगे, पक्के संस्कार बन जाते हैं, परिवर्तन कब करेंगे। इसलिए सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चा वैष्णव अर्थात गुण देखने वाले, अवगुण चित्त पर न धरने वाले। यदि किसी में अवगुण दिखाई ही दे रहे हैं और कोई मर्यादा के विपरीत कर्म कर रहा है, उसके लिए भी आज की मुरली में श्रीमत है। क्या है, क्या करना है? जो शिव बाबा का कोर्ट बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, उसके सामने अपनी दलीलें पेश करो, परंतु वो भी कैसी, जज और वकील बनकर नहीं, मिलावट ना हो और ख्यानत ना हो, डिसऑनेस्टी ना हो। क्योंकि जब हम जज बन जाते, जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड, जब हम जज नहीं करेंगे तो हमें भी जज नहीं किया जाएगा। जब हम जज बनेंगे, हम क्रिटिसाइज करेंगे, हम अपोज करेंगे, हम विरोध करेंगे, तो वो सब हमारे साथ होगा। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने अव्यक्त महावाक्य उच्चारण किए थे, यदि तुम किसी की निंदा करते हो तो, तुम्हारी दुगुनी निंदा होगी। इसलिए परमात्म श्रीमत है, गुणमूर्त बनो, गुणमूर्त हो, सबको देखो, इससे एक पॉजिटिव ऊर्जा फैलेगी चारों ओर। क्रिटिसिज्म में निगेटिव भाव है, विरोध में निगेटिव ऊर्जा है, वर्णन करने में बहुत अधिक निगेटिव ऊर्जा है, और उससे समय बर्बाद, शक्ति बर्बाद और एक अपराध भाव जागृत होगा अंदर ही अंदर। इसलिए पहला खेल कौन सा बताया, जिसको समा लेना है। अगर ऐसा करते हो तो इससे जाहिर है कि समाने की शक्ति नहीं है, कम है, ये एक बात। बहुत कुछ गवाते हो, उल्टी कलाबाजी करते हो, उल्टा हो जाते हो, तो ये पहला खेल। सभी लोग लिख लो, पहला खेल था फैलाने का खेल, जिन बातों को समाना है उसको फैलाना नहीं है। दूसरा खेल समाने का खेल, अभी जिन बातों को फैलाना है उनको समा देते। इसकी चर्चा मुरली में नहीं है, परंतु क्या हो सकता है, वो कुछ बातें ऐसी है जो हमें फैलानी है पर हम उसको समाते हैं, सोचते हैं ये तो सब में है। वो कौन सी बातें हैं? ज्ञान की बातें। इस ज्ञान को फैलाओ, इस ज्ञान की चर्चा करो, ये ज्ञान निरंतर हमारे मुख से निकलता रहे, इस ज्ञान की ही निरंतर चर्चा, संवाद, परिचर्चा, गोष्ठी, सेमिनार, वर्कशॉप, सब कुछ होता रहे। आपस में क्या लेन देन करो? ज्ञान की लेन देन। और क्या करो? अनुभव, अनुभव, अनुभव को फैलाना है। और किसको फैलाना है? गुणों को फैलाना है, और शक्तियों को, और खजानों को, और पॉजिटिव एनर्जी को, पॉजिटिव संकल्पों को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, पॉजिटिव वर्ड्स को, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव फीलिंग्स, इसको फैलाना है। क्या मैं वो कर रहा हूं? सब अपने आप से ये पूछिए कि मैं कौन सी एनर्जी फैला रहा हूं। जो जो हम संकल्प करते हैं वो संकल्प सीधा प्रकृति में जाता है। क्या उसकी क्वालिटी है? क्या विकारों से वशीभूत है? क्या किचड़े वाला तो नहीं है? बाबा ने किचड़ा कहा अवगुण को, आज किचड़ा कहा, अवगुण कहा परचिंतन को। क्या मेरे संकल्पों में परचिंतन है? स्वयं स्वयं की चेकिंग करनी है इस भट्टी में। तीसरा, तीसरा है, क्या पाया क्या गवाया, ये खेल। क्या पाया क्या गवाया, इसमें बाबा ने कहा शिव बाबा को दादा, दादी को और दादी दीदी को चलाते हैं, मनाते हैं, चलाते हैं। प्रश्न पूछना है, इस खेल का नाम है क्या पाया और क्या गवाया। अपने आप से सभी ब्राह्मण ये प्रश्न पूछे, जब से बाबा के बने क्या मैंने पाया और क्या मैंने गवाया। क्या ब्राह्मण बनने के बाद भी ऐसे कोई कर्तव्य किए कि जिसमें हमने बहुत कुछ गवा दिया? पाने का समय था, किसकी लिस्ट में आ जाएंगे? पाना था कि लिस्ट में, कि पा रहे हैं कि लिस्ट में? प्राप्ति स्वरूप के लिस्ट में आ जाएंगे कि पाया, पा रहे हैं कि लिस्ट में? पा रहे हैं कि लिस्ट में आ जाएंगे? प्राप्ति स्वरूप के लिस्ट में नहीं आएंगे। तो क्या पाया और क्या गवाया, कितना अच्छा प्रश्न है, कितना अच्छा महावाक्य है। रोज स्वयं से पूछना है क्या मैंने पाया और क्या मैंने गवाया। ये खेल अब बंद करना है, गवाने का, चलाने का। कुछ समय के लिए प्रशंसा मिल जाएगी मित्रों से, बाबा ने कहा, परिवार से, परंतु अल्पकाल की होगी, ज्यादा नहीं समय की, दो तीन साल, दो तीन साल बहुत ज्यादा हो गया वो भी, परंतु जन जन की जो कमाई है वो गवा दोगे, श्रेष्ठ पद को गवा दोगे। तो ये तीसरे नंबर का खेल था, चलाना नहीं है, झूठ बोलना, चलाना, इम्प्रेस करना, प्रभावित करना, दिखाना मैं ये कर रहा हूं, मैं ये हूं और मैं वो हूं, मैंने ये किया और मैंने वो किया। बाबा ने कहा शिव बाबा को भी चलाते, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन, आत्म प्रवंचना, आत्म वंचना, आत्म प्रवंचना, स्वयं ही स्वयं को धोखा देना। कोई दूसरे को धोखा दे एक दूसरी बात है, तो दंड दिया जा सकता है, परंतु जब व्यक्ति स्वयं स्वयं के ही अंत चेतना को और अंत करण को धोखा देता है, उसको कौन सजा देगा? जो दूसरों को धोखा देता है वो तो चलो दूसरों से माफी भी मांग लेगा या उसे दंड मिल जाएगा, परंतु जो स्वयं को ही धोखा दे रहा है उसकी क्या गति है? स्वयं ही स्वयं को धोखा दे रहे, पता है कि श्रीमत ये नहीं है फिर भी कर रहे हैं। अपराध भाव जन्म लेगा, आत्मग्लानी जन्म लेगी, ऐसी सुप्त आत्मग्लानी अंदर ही अंदर खाएगी। ऊपर से सब कुछ है, अमृत वेला कर रहे, मुरली जा रहे, सारी नियम मर्यादा है, परंतु आत्मग्लानी का भाव चैन से नहीं रहने देगा। क्या पाया क्या गवाया, तीसरा खेल। चौथा, क्या बनने आए थे और क्या बन रहा हूं का खेल। चौथा खेल, क्या बनने आए थे और क्या बन रहा हूं। इंस्टेंट फ्रूट, प्रत्यक्ष फल कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख, परंतु उसे न प्राप्त कर क्या प्राप्त कर रहे? अल्पकाल की खुशी और नाम। यहां नाम हो जाए, ये अल्पकाल की खुशी साधनों से या किसी और से प्राप्त हो जाए यह खेल। रोज अपने आप को एक प्रश्न पूछना है, क्या बनने आए थे कॉमा क्या बन रहा हूं क्वेश्चन मार्क। क्या बनने आए थे और क्या बन रहा हूं, क्या अल्पकाल के साधनों के पीछे जीवन दौड़ता चला जा रहा है, क्या अल्पकाल की खुशी के लिए, नाम के लिए, मान के लिए और शान के लिए, क्या ये लक्ष्य था, क्या इन उमंगों से बाबा के बने थे? याद करो वो दिन जब हम बाबा के बने थे, कैसे संकल्प थे मन में, जब मधुबन में आए थे, जब सेंटर गए थे, कैसी उमंगे थी, ये कर दूं और वो कर दूं, महान तपस्या का लक्ष्य था, कहीं तपस्या खो तो नहीं गई, महान योगी बनने का लक्ष्य था, कहीं योगी बनने का वह लक्ष्य खो तो नहीं गया। अपने लक्ष्य का पुनः जागरण, रीअवेकनिंग, क्या लक्ष्य है, यह चौथा खेल। पांचवा खेल, मिट्टी का खेल। पांचवा, मिट्टी का। नीचे है मिट्टी और ऊपर है झूला, कौन सा झूला? आतीन्द्रिय सुख का झूला, इधर ऊपर ऊपर है और नीचे मिट्टी है, मिट्टी अर्थात देह। इस देह के सुख, इस देह की इच्छा, इस देह की कामना, इस देह की वासनाएं, इस देह से प्राप्त क्षणिक सुख, क्या इसके लिए यहां आए थे? देह के पदार्थ, देह की इच्छाएं, देह की तृष्णाएं, देह का आकर्षण, क्या मिट्टी से खेलने यहां आए थे, या वह सुख प्राप्त करने आए थे जिसका नाम है अति इंद्रिय? अति इंद्रिय सुख अर्थात वह सुख जो इंद्रियों के, इंद्रियों से परे और इंद्रियों की सहायता बिना प्राप्त किया जाता है। शब्दकोश में यह परिभाषा है, डिक्शनरी डेफिनेशन, वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बगैर प्राप्त किया जाता है उसे कहा जाता है अति इंद्रिय सुख, सुपर सेंशुअस, सुपर नेचुरल सुख, हैप्पीनेस, ब्लिस, रैप्चर, एक्सटेसी, बीएटीट्यूड। तो वह अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलना है, मिट्टी से नहीं खेलना है, परंतु मिट्टी से खेलने की आदत जन जन की है, बहुत अच्छी लगती है। कई लोग मिट्टी भी खाते हैं, हमारे पास आते हैं और कहते हैं बहुत अच्छी लगती है, पाइका कहते हैं उसे इंग्लिश में, पाइका, पाइका की बीमारी। यहां है स्पिरिचुअल पाइका, अर्थात मिट्टी, यह देह मिट्टी है। देह को ही सब कुछ समझना, जबकि लक्ष्य ही है देह से परे जो आत्मा है उस तत्व में स्थित होना। तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है, ना कि मिट्टी से खेलना है। बाप ने तुम्हें कुल का दीपक बाबा देखते हैं, नंबर वन बच्चा देखते हैं, मुरली में महावाक्य है। शोभता है क्या ये? छठवां खेल, चढ़ना और रुकने का खेल। ऊपर है हवाई जहाज और नीचे है पहाड़, तो खेल कौन सा कर रहे हैं? चढ़ने का और रुकने का, चढ़ने का और रुकने का, पहाड़ अर्थात परिस्थिति। तो करना क्या है, कौन सा खेल करना है? एरोप्लेन वाला खेल खेलना है। बिंदु बन बाप के साथ उड़ो, परिस्थितियां नीचे रह जाएगी। जितना बाप से सामीप्य है, समीपता है, इंटीमेसी है, प्रॉक्सिमिटी का अनुभव है, उतना ही परिस्थितियां नीचे रह जाएगी। नहीं तो निरंतर हर परिस्थिति के लिए कंप्लेंट, व्यक्तियों के लिए कंप्लेंट, ये व्यक्ति ऐसा है, ये घर ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, स्थान अच्छा नहीं है, ऑफिस के लोग अच्छे नहीं है। क्या कहा उत्तर में बाबा ने? उड़ो, फ्लाइट ऊपर। सातवां खेल, प्रश्न का खेल। बीती सो बीती, कब तक वही बातों का चिंतन, वर्णन, डिस्कशन जो हो चुका है और जिसे अभी बदला नहीं जा सकता है। बाबा ने कहा है प्रश्न, अब बिंदी लगाओ। प्रश्नों वाला खेल, कब तक प्रश्नों से पार चलना है? केवल प्रश्न और उसका उत्तर, उस उत्तर से और नए 10 प्रश्न निकलते हैं, यही खेल है। इस खेल से परे जाना, तो ये एक खेल है। आठवां खेल, अभिमान का खेल। पार्टी नंबर 2, बाबा किनकी सेवा करने को कह रहे हैं? जो रिटायर्ड है, फुर्सत है जिनके पास, तो जिनके पास फुर्सत है उनके लिए फुर्सत से उनकी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास क्या है? अभिमान है। कौन सा? अनुभव का। परंतु हम जो खेल की बात कर रहे हैं वो दूसरा, ज्ञान का अभिमान। उसी में बाबा ने कहा है, क्या समझते हैं उनको? ऐसा नहीं समझो कि मैं जानता हूं आप नहीं जानते, ये क्या है? ज्ञान का अभिमान। हम जानते हैं आप नहीं जानते। एक तो है मैं जानता हूं, यहां तक ठीक है, ये समान है कि हमारे पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, परंतु तुम नहीं जानते, इसमें धोखा है थोड़ा, इसमें अहंकार जन्म ले रहा है। तो ये अभिमान का खेल है। भक्ति में कहावत है, ज्ञान अज्ञान जो है वो अंधकार है, अज्ञान अंधकार है, परंतु ज्ञान महाअंधकार है। यदि वो ज्ञान अहंकार को जन्म देता है तो उनको क्या करना है? जो रिटायर्ड है, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, शेयर करना है, लेन देन करनी है, मित्रता करनी है, सुनना है। ये नहीं समझो कि मैं सुनाता हूं तुम सुनो, आपको पता नहीं, यह अहंकार है। हम अपने अहंकार की ही अभिव्यक्ति करते, अपने अहंकार की ब्राह्मण पूर्ति करता है, मौके की तलाश है उसे। मिल गया अज्ञानी कि सारा ज्ञान उड़ेल दो, उसमें सूक्ष्म में कहीं ना कहीं एक अहंकार रहता है कि इसे नहीं पता मुझे पता है, और बाबा कहीं और चला जाता है। जैसे बचपन के 2 मित्र थे, दोनों ही बहुत अहंकारी थे, परंतु एक का स्वभाव वैरागी था, एक जाकर राजा बना और दूसरा सन्यासी बना। जो राजा था वो तब भी अहंकारी था, परंतु उसे लगा कि मेरा मित्र भी तो बहुत अहंकारी था, परंतु वो तो वैरागी बन गया, सन्यासी बन गया, शायद उसका अहंकार मेरे से तो कम ही हो गया होगा। तो उसे जब खबर मिलती है कि मेरा जो मित्र था बहुत बड़ा तपस्वी और योगी और उसकी बहुत ख्याति है, तो वो सोचता है मैं अपने मित्र को अपने राज्य में बुलाऊं, मुझे ये भी तो देखना है कि उसका अहंकार वैसा ही है संन्यास लेने के बाद या कम हुआ है मेरे जैसा ही। मुझे तो पता है कि मेरे पास है, पर मुझे उसका देखना है उसका क्या हाल हुआ, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो वो अपने मित्र को बुलाता है, लाखों खर्च करता है, पूरा गांव पूरा शहर सजा देता है और लाल क्या कहते हैं कारपेट, रेड कारपेट रिसेप्शन, उस तरह का पूरा शहर में उसके लिए आयोजन किया जाता है। और वो जो मित्र है उसका जो कि फकीर है, वो जब सुनता है कि ऐसा ऐसा मेरा मित्र बहुत बड़ा राजा बन गया और उसे बहुत अहंकार भी है, वो सोचता है मैं भी क्या कम हूं क्या, मैं भी बहुत बड़ा फकीर हूं, जितने छोटे थोड़े जो वस्त्र होते उसको भी फेंक देता है, चप्पल होती है उसको भी फेंक देता है और राजा के शहर में प्रवेश करता है। परंतु वो क्या करता है, ऐसा ही मौसम तब था, ना बारिश थी ना कुछ था, गर्मी का मौसम था, परंतु अपने पैरों आधे घुटनों तक पूरा कीचड़ से लगा लेता है और कीचड़ भर लगा के उस वो जो कालीन होती है उस पर चलता है, सब कुछ खराब करते हुए, ये दिखाने के लिए अंदर ही अंदर कि मैं भी कुछ कम नहीं हूं, मैं भी बहुत बड़ा योगी हूं, मैं भी सारी परिस्थितियों को झेल कर यहां आया हूं। तो दोनों मिलते हैं, राजा उससे पूछता है जब बैठते हैं, मैं तो समझता था कि तुम बहुत लंबी यात्रा कर चुके होंगे अहंकार के बिना नष्ट होने की, परंतु देख रहा हूं तुम में भी वैसा ही अहंकार है। फकीर कहता है जब मैंने ये सुना कि तुम बहुत बड़े राजा बन गए और तुम में बहुत अहंकार है, तो मेरा भी वही बचपन का अहंकार वैसा ही जागृत हो गया। मैं भी तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं कि तुम भले बने होंगे राजा, मैं भी कोई छोटा फकीर नहीं हूं, मैं भी कोई कम फकीर नहीं हूं, मेरा अपना अहंकार जागृत हो गया। तो चाहे व्यक्ति संसार को छोड़ दे या कुछ भी कर दे, अहंकार तो वैसा ही जीवित रहता है, उसकी अपनी साधना है जो बाबा ने हमको सुनाई है सिखाई है, निमित्त भाव। तो ये ना समझना कि हम जानते हैं और दूसरे नहीं जानते, यह अहंकार की अभिव्यक्ति होगी कहना हमने इसका कोर्स कराया, हमने इसको ज्ञान में लाया, हमने इसको बाबा से मिलवाया, हमने इसको मधुबन लेके गए, तुम कहां से आ गए, आत्मा के ही जन्म जन्म के पुण्य ही ढकेल ढकेल के कर आत्मा को मधुबन में पहुंचाती है, उसके ही अपने जन्म जन्म की भक्ति है, वो भगवान से मिला रही है, तुम केवल निमित्त मात्र हो। तो कौन सा खेल हो गया ये, आठवें नंबर का खेल, अहभिमान का खेल। फिर है नौवें नंबर का खेल, वो खेल है इच्छा, मान की इच्छा का खेल। जब मान की इच्छा होगी तो भारीपन होगा और भारीपन होगा हल्का नहीं होंगे। और सेवा में सफलता का आधार क्या है, निर्माण करने का आधार क्या है, निर्माण बड़ा न करने का आधार है छोटा न निर्माण, मान रहित कामना रहित इच्छा रहित नाम की जब कामना है, हर कर्म को कामना से किया जा रहा है कि मेरा नाम हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, लोगों को पता चल जाए ये मैंने किया, डिजायर फॉर एप्रिसिएशन, डिजायर फॉर एप्रिसिएशन, नेम फेम, डिजायर फॉर फेम इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डिजायर्स। स्वामी विवेकानंद ने कहीं एक भाषण में कहा है कि अध्यात्म मार्ग में जब योगी निकल पड़ता है तो उसके अंदर एक ही काम क्रोध लोभ मोह वो तो सब छूट जाता है, परंतु इच्छा जो बच जाती है वो कौन सी, नाम की, मेरा नाम हो जाए, सब मुझे जान जाए, पता चल जाए, हम भी तो कुछ है, हम भी कोई लिंबू टिंबू नहीं है। तो नब्बे नंबर का खेल कौन सा है, मान की इच्छा, मान की इच्छा होगा होगी तो भारीपन होगा, बोझ होगा, हल्कापन नहीं होगा। और सेवा की सफलता का आधार है, निर्माण करने का आधार है निर्माणता। दसवां खेल, अब आप बताओ दसवां कौन सा होगा, लास्ट मुरली का फोर्थ पार्टी, संबंधों का खेल, मित्रता का खेल, फ्रेंडशिप। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, सच्चा मित्र कौन है? बाप। और किसी को मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं है। कितना वंडरफुल महावाक्य है। तुम्ही से बैठू, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से खेलू, तुम्ही से सर्व संबंध, तुम्ही से सब कुछ, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की लगन, एक की याद में मगन, एक वो और दूसरा ना कोई, एक वो दूसरा मैं और तीसरा ना कोई, तीसरा आया तो तीसरी आंख बंद हो जाएगी, विवेक समाप्त तो हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि उस तरफ चली जाएगी। इसके लिए सर्व संबंधों का रस एक से, जितना सर्व संबंधों का रस तुमने अनुभव किया है उतना ही करा सकते हो। यदि हमने ही अनुभव नहीं किया और हम दूसरी आत्माओं को कहो कि तुम्हारे परमपिता परमात्मा है, जबकि हमने वो बाप के संबंध का अनुभव नहीं होगा तो वो तीर भी नहीं लगेगा। जितना हमने पाया है उतना ही हम दे सकते हैं, तो किसने कितना पाया है इसकी स्वयं चेकिंग करनी है। तो कितने खेल हो गए? 10। फिर से सभी रिवाइज करेंगे। पहला, फैलाने का खेल, फैलाने का खेल। सभी लिख लो खेलों को, ताकि इस भट्टी में जाने से पहले ये सारे खेल यहीं समाप्त करके जाएंगे। पहला खेल, जिन बातों को समाना है उसे फैलाना नहीं है। दूसरा, समाने का, जिन बातों को समाना है, यदि ज्ञान की कोई अचानक से आलोक, एक प्रकाश आ गया मुरली सुनते सुनते ही, जो पॉइंट आज तक हजारों बार सुनी पर उस दिन सुनते सुनते अचानक एक नया अर्थ बुद्धि में चला गया, उसको जरूर सुनाना है सबको। दूसरा, तीसरा, क्या पाया और क्या गवाया, पाया क्या गवाया क्या, यह खेल। चौथा, क्या बनने आए थे और क्या बन रहे हो, क्या करने आए थे और हे योगी क्या कर रहे हो, क्या परचिंतन करने आए थे, परदर्शन करने आए थे, निंदा करने आए थे, एक दूसरे की ग्लानी करने आए थे, कि महान योगी, महान तपस्वी, महान आत्मा बनने आए थे, भगवान का नाम प्रत्यक्ष करने आए थे, अपने जीवन को दिव्य, महान और श्रेष्ठ बनाने आए थे, क्या करने आए थे, क्या गिरने आए थे? स्वयं स्वयं को देखना है। चौथा खेल, चौथा, पांचवा खेल, मिट्टी, देह मिट्टी है। इस देह से जो प्राप्त सुख है वो क्षणिक है। देह देह स्पर्श से प्राप्त सुख सभी क्षणिक है और दुख के कारण बनते हैं। अंतिम परिणति दुख है। चाहे कितना भी सुख का आभास हो रहा है इस देह में, इस देह के स्पर्श से, परंतु स्पर्श जनित सुख अंततो गत्वा दुख में परिणित होता है। इसलिए देह को क्या समझना है? मिट्टी, क्ले, सॉइल। हम रॉयल बच्चे हैं, मिट्टी से खेलने वाले नहीं है, शोभा नहीं देता हमको। इस देह को देखना, इस देह में क्या सौंदर्य है, क्या है अंदर भरा पड़ा। ब्यूटी इज बट स्किन डिप, मल मूत्र, इसके अधिक कुछ नहीं है। बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, इससे अधिक उसमें अंदर कुछ नहीं है। कहां से सौंदर्य? भ्रामक भ्रांति है कि देह बहुत सुंदर है। मिट्टी का खेल। अगला, चढ़ना और रुकने का खेल। कब तक टकराओगे परिस्थितियों से? उड़ो फ्लाइट एरोप्लेन में बाप के साथ। पायलट कौन है हमारा? शिव बाबा। तो डरने की बात नहीं है। अगला खेल, प्रश्न। जीवन प्रश्नों से भरा है। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, यहां क्या, वहां क्या, ये प्रश्न। एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो दूसरा प्रश्न तैयार। प्रश्न ही प्रश्न है जीवन में, समस्या ही समस्या। बस तलाश है, कोई मिल जाए तो उससे प्रश्न पूछे। इंतजार में ही है कोई आत्मा मिले और उससे प्रश्न पूछे, जबकि हर प्रश्न का उत्तर हमारे ही अवचेतन मन में है। कहीं भी बाहर से कभी उत्तर नहीं आ सकता है। हमारे जीवन की परिस्थिति है, बाहर से उत्तर कैसे आएगा? हाँ, सहयोगी बन सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, परंतु उत्तर नहीं आ सकता है। उत्तर अंतःकरण में अंदर समाया हुआ है, अवचेतन की गहराई में, अवचेतन की परतों में है, क्योंकि प्रश्न वहीं से जन्म ले रहा है। तो उसका उत्तर बाहर से कैसे आ सकता है? प्रश्नों से पार, फुल स्टॉप। आठवां खेल अभिमान का, किस बात का अहंकार। प्रभु प्रसाद, प्रभु विशेषता, प्रभु देन है, जो कुछ पाया है क्या हमारा कुछ है? अगर वो चाहे तो वो छीन भी सकता है। हमें मोहम्मद रफी की एक बात हमेशा याद आती है कि मोहम्मद रफी ने कभी कहा था, जब उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे कोई, उन्होंने कहा था अगर खुदा चाहता तो ये आवाज किसी और को भी दे सकता था। ये तो उसकी अनुग्रह, उसकी अनुकंपा, उसकी मर्सी, कॉजलेस कंपैशन, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। ऐसा बिना कारण के उसने कृपा की है हम पर, नहीं तो हमारी योग्यता थी क्या? और अब अहंकार, अब कैसी अकड़। इसलिए राजी तेरी रजा में, Thy will shall be done। अगला खेल मान। हम मान प्राप्त करने यहां नहीं आए थे, हम परमात्मा प्यार प्राप्त करने आए थे। अगला खेल संबंध। संसार के जितने संबंध हैं कभी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा अनंत है और संबंध अंतहीन, अंत वाले हैं, आदि अंत वाले हैं, शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है। ऐसे संबंध जिनका स्टार्टिंग, मिडल और एंड है, वो कभी अनंत आत्मा को अनंत ही संतुष्ट कर सकता है, अनंत की प्यास अनंत ही बुझा सकता है। आत्मा अनंत है, इन्फिनिट है, अविनाशी को अविनाशी ही भर सकता है, विनाशी चीजें कैसे भर सकती है? इस संसार, इस कलयुग के सारे संबंध विनाशी है। तो ऐसे ये 10 प्रकार के खेल है, इन्हें यहीं छोड़कर जाना है। जाएंगे सभी छोड़ के? ऐसे कैसे बच्चे हैं? ऐसे प्रभु पसंद आत्माओं को, ऐसे बाप समान बनने वाली और समीप रत्नों को, ऐसे सच्चे वैष्णव आत्माओं को, ऐसे विष्णु के राज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे शुभ भावना से। शुभ भावना से क्या? दूसरों को चेंज, भाई भाई की दृष्टि की स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माओं को, ऐसे गुणमूर्त आत्माओं को, ऐसे गुणग्राही दृष्टि वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।